لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد، فقال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. صدق الله العلي العظيم. مؤمنين، یہ سورہ شعراء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیت پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کرا، یہ 90 آیت تو سلسلہ اس طرح سے جاری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کا دن کا حال قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ترجمہ اس طریق سے، اور جنت کو متقین سے قریب کر دیا جائے گا، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. تو یہ چیز ہوگی جب قیامت، جب حشر کے میدان میں ہوں گے، اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت بھی پیش کی جائے گی اور دوزخ بھی لائی جائے گی. تو یہ بھی ایک طرح کی جزا اور سزا ہے. متقین جب جنت آئے گی تو خوش ہوں گے، اور بڑا دل دیے خوش ہوں گے، آ رہی جنت اور تو قریب ہو جائے گی، اور جہنم آئے گی تو خوف طاری ہو جائے گا. جو لوگ دوزخ میں جانے والوں میں، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، ایک طرح کا ایک خوف دکھے گا، اور دوزخ کی چیخیں اور سب ظاہر ہوں گی، اس کی تپش. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، کیونکہ ہم سوچتے تھے نا کہ ہاں مطلب کہ حشر کا میدان تو ہے، پھر جنت دوزخ کیسے آئے گی، دماغ میں بات آتی ہے. تو اللہ نے اس کو بیان کرا، پھر آئی، پھر وہ کہ پھر وہ چیزیں آئیں گی، ظاہر ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ وقیل لہم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون. اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کیا تمہاری وہ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنی مددگار ہیں. جب یہ حالت ہوگی تو مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے معبود تھے، جن جھوٹے معبود تھے، وہ کہاں ہیں، وہ ہیں کہاں. وہ پھر پوچھا جائے گا کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود اپنے مددگار ہیں، کیا ان میں کچھ طاقت بچی ہے کہ یا تو تمہاری مدد کر لیں یا خود کی مدد کر لیں. پھر کیا ہوا؟ فَقُبْ كِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. یہ جو لفظ آیا ہے کب کی، وہ چہرے کے بل پر دوزخ میں ڈالنے کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چہرے کے بل کسی کو پھینکا جائے اس کو کہتے ہیں کب کی. بس جہنم کے گھڑے میں وہ لوگ اور تمام گمراہ افراد پھینک دیے جائیں گے، وہ جنود ابلیس اجنعون، اور ابلیس کے مکمل افواج، تین گروہ جہنم میں جائیں گے. پہلا کس کا ذکر ہے؟ میزان کہتا ہے کہ پہلا ذکر ہے بتوں کا، کہ وہ جہنم میں اوندھے منہ گریں گے، اور اس کے ساتھ کون؟ گمراہ لوگ، جو جنہوں نے ان بتوں کی پرستش کری تھی. اور تیسرا کون سا گروپ جانے والا؟ اور ابلیس کا مکمل افواج جانے والی ہے، کیونکہ ابلیس اکیلا تو نہیں نا، اس کی پوری قوم ہے. تو تین گروہ جانے والا ہے جہنم میں. پہلا گروہ بت، دوسرا گروہ بت پرست، اور تیسرا گروہ شیطان کا لشکر، تینوں جہنم میں جانے والا ہے. قالوا وهم فيها يختصمون، اور سب کے سب جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جھگڑا ہوا جنت اور جنت میں ہی فرق ہے. جنت کے اندر کوئی چیخ پکار نہیں ہے، ایک سکون اور سلامتی سلام ہے، اور جہنمیوں میں جھگڑے جھگڑے چیخے. تو مومنوں کے گھروں کی نشانی یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں جھگڑا نہیں ہو، سکون رکھے ہیں، صبر رکھے ہیں. مطلب گھر کو جہنم نہیں بنائے ہم لوگ کہ جھگڑتے پھر رہے ہیں، یا مسجدوں کو ایسا نہ کر دیں کہ بس 24 گھنٹے جھگڑے پڑ رہے ہیں، یہ اچھی نشانی نہیں ہے. طبیعت میں صبر و سکون آئے انسان کے، جو किरदार आपका यहाँ है, वही किरदार आपका वहाँ रहेगा। आप यकीन सोच सकते हैं कि आप यहाँ खूब झगड़ने वाले हो, जन्नत में जाकर सुकून से बैठ जाएंगे। अपना किरदार इंसान ऐसा बना है, तो इस तरीके से झगड़ा शुरू हो जाएगा वहाँ, तो तीनों आपस में ये झगड़े शुरू हो जाएंगे। फिर क्या कहेंगे वो लोग जो जो गुमराह हो गए, तो क्या कहेंगे, इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून फमा लना मिन शाफ़ईन वला सदीक़िन हमीम वलव अन्न करतन फनकूनु मिनल मुमिनी। अब क्या कहेंगे मुझे जाके, क्या कहेंगे, झगड़ा होगा। इसमें तीन ग्रुप गए, एक तो बुत बुतपरस और शैतान का लश्कर। क्या कहेंगे, तल्लाह इन कुन्ना फी दलाल मुबीन, वो कहें खुदा की कसम यकीनन बेशक हम लोग खुली गुमराही में थे। तब जाके इतराफ़ करेंगे, अभी तो नहीं करते, फिर जाके इतराफ़ करेंगे कि खुदा की कसम, तल्लाह है खुदा की कसम, इन कुन्ना फी दलाल मुबीन, इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें रब्बिल आलमीन के हम पल्ला करार देते रहे, कहेंगे कि हम तुम बुतों को, हम बुतों को रब्बिल आलमीन के बराबर बताते रहे, तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, लेकिन सब सब जाया हो जाएगा। और फिर क्या कहेंगे कि ये जो हमने हरकत करी थी, ये क्यों करी थी, क्या कहता है कुरान, क्या कुरान कहता है, और हमें तो इन मुजरिमों ने गुमराह कर दिया था। कौन मुजरिम थे, एक तो ये थे शैतान का लश्कर था, चल जो अल्लाह की रियाज से गाफिल होता है अल्लाह उसको शैतान मुखर कर देता है, ये बात तो मालूम कुरान में इसलिए आए थे। तो ये शैतान के लश्कर से झगड़ेंगे ये कि तुमने गाफिल करा, और किसे झगड़ेंगे, और ये झगड़ेंगे अपने शहर के जो वो थे लीडर्स थे, मुखिया थे, जो उनको गुमराह किया करते थे, उनसे झगड़ेंगे कि तुमने हमको गुमराह करा, तुमने हमको गुमराह करा, मुखियाओं से लीडर से सबसे झगड़ने वाले हैं कि तुमने हमको गुमराह करा था, जो कि हम तुम्हारी बेका में आके रब्बिल आलमीन के बराबर हम बुतों को से मोहब्बत करते थे। और फिर क्या कहेंगे, वो जब इतना हो जाएगा फिर क्या कहेंगे, अब हमारा न तो कोई सिफारिशी है वो नहीं कोई सच्चा मुखलिस दोस्त, कहेंगे ना तुम्हारा सिफारिशी बचा है न कोई हमारा कोई मुखलिस दोस्त बचा है। और फिर क्या कहेंगे, काश हमें वापसी का मौका मैसर आता तो हम मोमिन बन जाते, करेंगे वापसी का मौका मैसर मिलता तो हम मोमिन बन जाते। तो इस तरीके से जहन्नम इस तरह झगड़ा शुरू हो जाएगा कि जब देखेंगे कि इन मुखियों की वजह से, इन शैतान लश्कर की वजह से, इन दुनिया में जो हमारे शैतान दोस्त थे इनकी वजह से हम गुमराह हो गए, एक शैतान दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ गया है इंसान की सूरत में भी आपको बर्बाद कर देगा। एक शैतान दोस्तों का ध्यान रखेंगे, कैसा इंसान आपके साथ ज़िंदगी में, आपका दोस्त आपको अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है कि शैतान की तरफ ले जाने वाला है, एक दोस्त आपको बर्बाद कर सकता है जहर की तरह, याद रखें इस बात को। तो इसके बारे में काफ़ी हदीस है कि जब ये कहेंगे कि ना तो हमारा कोई सिफारशी है न कोई हमारा मुखलिस दोस्त है, इसके बारे में काफ़ी हदीस है, हदीसों में ये है कि जब ये लोग जहन्नम में होंगे और जब देखेंगे कि जो मोमिनीन की बख्शीश इतनी हो रही है एक के बाद एक, तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर करेंगे। तो ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन बार कहा कि हम हमारे शियों की सिफारिश करेंगे, हमारे तीन बार कहा उन्होंने, हम तो हमारे शियों की सिफारिश करेंगे यहाँ तक कि हमारा दुश्मन इस तरह से कलाम करेंगे कि न तो हमारा कोई सिफारिश ही न हमारा कोई दोस्त है, अभी हम लोग जिस तरीके से सब्र कर रहे हैं दुनिया में लल बेत की मोहब्बत की वजह से, लेकिन इसका असर जाहिर होने वाला है इंशाल्लाह। तो काफ़ी हदीस है सिफारिश के बारे में, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस दिन मोमिन अपने पूरे घर के अफराद के लिए सिफारिश कर सकता है, एक तो ये हदीस है। फिर सरकार फरमाते हैं कि आखरत में कुरान और मोमिनीन और पैगंबरान और अहले बैत सिफारिश करेंगे, ये दूसरी हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। कहे हमारी सिफारिश उसके लिए नहीं है जो कि नमाज को हल्का समझे, तो नमाज का ध्यान रखें, नमाज का ध्यान रखें, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, दिल से नमाज पढ़ें, नमाज को नूरानी बनाएं। अब फिर उसके बाद सरकार की हदीस है, बहुत काबिल गौर है, कुरान को सीखो क्योंकि ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश बनी, जो भी उसकी इत्तेबा करेगा कुरान की, उसकी सिफारिश करेगा कुरान, कुरान की सिफारिश हमको ज़रूरी है। अगर कुरान नाराज़ हो गया, कहा कि इसने मुझे नहीं पढ़ा था, तो सब बेकार हो जाएगा। फिर सरकार फरमा देंगे तीन गुरुह सिफारिश करेंगे, पैगंबरान, उलमा और शहदा, ये तीन गुरुह सिफारिश करेंगे। ये हदीस सरकार की, एक हदीस सुने आप, सरकार ने कहा कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत के लिए एक दुआ की थी खास, मैंने अपनी दुआ जो खास बचा के रखी है मेरी उम्मत के लिए, वो कयामत के दिन है कि अल्लाह ताला तो मेरी उम्मत को बख्श दे। कितने कैसे हमारे पैगंबर, हमको फख्र करना चाहिए सरकार पे कि उन्होंने हमारे लिए दुआ संभाल के रखी है। क्या मेरी दुआ उस दिन होगी मेरे कौम के लिए कि मैं मेरे कौम की सिफारिश करूँ? तो ये सिफारिश के मराहिल है। लेकिन जिन लोगों ने बुत परस्ती करी और गुमराह हो गए, तो उनके लिए कोई सिफारिश नहीं है। अहले बैत के जो दुश्मन हैं, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं है। अहले बैत जिन्होंने छोड़ दिया, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मवद्दत अहले बैत को वाजिब करार दिया। जिन्होंने उनसे मवद्दत ना करी, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी करी, अल्लाह की नाफरमानी करी, सरकार की नाफरमानी करी और अहले बैत की नाफरमानी करी। इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, यकीनन इसमें बड़ी निशानी है लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं है। इन्ना रब्बुका हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब वो है जो ज़बरदस्त और मेहरबान है। बार बार अल्लाह सुब्हान तआला ने पैगंबरान के किस्से बयान करें, तो आखिरी में ये आयत दोहराई है कि इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ थी लेकिन ज़्यादातर लोग ईमान न लाएंगे। क्यों नहीं ईमान लाएंगे? क्योंकि वो कभी तफक्कुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, दुनिया में लगे हुए, कुरान कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं, बस कभी सुना तो सरसरी सुन भी लिया तो कभी गौर फिक्र नहीं करा। तो ईमान कैसे आएगा इस तरह से? ईमान के लिए तो आदमी को थोड़े संजीदा होना पड़ता है, एक वक्त निकालना पड़ता है कि बैठ के सोचे, वो कुछ कल्ब में नूरानियत पैदा करे, फिर ईमान आना शुरू होता है। फिर लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना रब्बुका हुवल अज़ीज़ुर रहीम, कि बेशक तुम्हारा परवरदिगार ज़बरदस्त भी और मेहरबानी है। ज़बरदस्त इस तरीके से कि वो अजाब देता है, मेहरबानी इस तरीके से कि उसने हमको मोहलत दी और हमारे लिए जन्नत रखी उसने। कद्दबत क़ौमु नूहिन मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अखूहुम नूहुन अला तत्तकून, नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा था क्या तुम डरते नहीं। अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम पर किस्सा शुरू करा, उनको भी झुटलाया था। क्या कहा अल्लाह सुब्हान व तआला ने कि उनकी कौम ने भी पैगंबरान को झुटलाया, तो उस वक्त कौन पैगंबरान थे? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम फरमाते हैं हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह के बीच में 10 कुश्तियाँ थी और हर एक में एक नबी था, लेकिन इन लोगों ने उन सबको झुटलाया था। इसलिए अल्लाह सुब्हान का कद्दरत कौम नूहिन मुरसलीन, नूह की कौम ने भी रसूलों को झुटलाया। जब याद करो जब उनके भाई नूह ने कहा क्या तुम डरते नहीं, ये जो लफ्ज़ आया ना उनके भाई नूह ने कहा, दूसरे पैगंबरान के लिए बोला ने भाई लफ्ज़ इस्तेमाल करा है। भाई लफ्ज़ इतना कीमती लफ्ज़ है, मोमिन मोमिन का भाई होता है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का भाई बताया, इसकी वजह क्या है? यानी रिश्ते का भाई, यानी किस तरह का भाई? मोहब्बत का भाई, जो उनसे हमदर्दी करता हो, उनके साथ इनके सारे से मिलता हो और उनसे उनकी उनका खैर ख्वाह, इसलिए उनको भाई का। कितने खैर ख्वाह थे कि रोते थे कौम के लिए, कौम पत्थर मारती थी फिर भी कौम की आखिरत की भलाई चाहते थे नूह अलैहिस्सलाम। मतलब कि किस तरीके से उन्होंने मोहब्बत करी, पैगंबरान की जो मोहब्बत है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने जो उनको रिसालत मिली उनके इल्म यकीन और मोहब्बत की वजह से, जब इल्म और यकीन आता है तो खुदा की मखलूक से मोहब्बत पैदा हो जाती है कि मैं इस मखलूक को जरूर जन्नत की तरफ लेके जाऊंगा। और फिर जब कौम न सुनती है और ज्यादातर कौम ने तो छुटलाया ही, तो बड़ी तकलीफ से पैगंबरान गुजरे हैं। इन्नी लकुम रसूल अमीन, यकीन मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूँ, मतलब मैं सच्चा रसूल हूँ तुम्हारे लिए। मैं जो भी बात कह रहा हूँ ये अपने दिल से बना के नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चा रसूल हूँ। फ़क़ुल्लाहूँ, तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, मेरी इताअत करो। अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ ये ज़रूरी है, उसके बगैर जन्नत नहीं है। और मेरी इताअत करो, हम मुसलमानों को चाहिए हम सरकार की इताअत करें, अहलमत की इताअत करें। आज़ादारी हम पर वाजिब है, लेकिन आज़ादारी के साथ हमारे लिए है कि हम इताअत हुसैन करें। वमा असलकुम अलैही मिन अजर, इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। और क्या कहा पैगंबरान, नहीं कहा करते थे, क्या कहते थे, और मैं इस कार्य तबलीग पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, बस मेरा तो अजर रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। कहा कि हम जो कर रहे हैं इसके अंदर हमें तुमसे अजर नहीं चाहिए, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, जो भी वो मुझे अजर देगा वो उसके जिम्मे है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरा परवरदिगार मेरे लिए काफ़ी है, जो मुझे देगा मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग हमको भी इस कम्युनिटी में से काम करना चाहिए कि हमको कम्युनिटी से कुछ नहीं चाहिए, ये सोचें आप, हमको नहीं चाहिए। अगर आप स्पीकर हैं ये नहीं सोचे कि मुझे कुछ वाहवा चाहिए या कुछ मुझे कुछ दाज चाहिए, ये चीज़ बर्बाद कर देती है कि मुझे वाहवा भी चाहिए, मुझे दाज भी चाहिए, मुझे अच्छा हदीय भी चाहिए। फिर वो बात पैगंबरान की सीरत पे आप नहीं चल सकते। अगर आप सच सिर्फ के दिल से आप लोगों को समझाएंगे, न उनकी दाज चाहिए न उनकी नाराज़गी से आप घबराएं। पैगंबरान से लोग कितने नाराज़ होते थे, हमको चाहिए कि लोगों की नाराज़गी से न घबराएं कि भैया ये लोग नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने ये पढ़ दिया वो पढ़ दिया, सब गलत बात है। जो है वो पढ़ें, अगर अल्लाह को मोहब्बत डालना हुई आपके लिए दिल में डालेगा, आपकी जिम्मेदारी पढ़ने वाली जिम्मेदारी कि आप सिर्फ के दिल से अल्लाह के लिए पढ़ें, बाकी सब अल्लाह के जिम्मे छोड़ दें, किसी से अजर नहीं लें आप। ये अजर एक मुसीबत है अगर आप अजर के चक्कर में पड़ गए, मैं पॉपुलर भी हो जाऊँ, मैं फेमस भी हो जाऊँ और लोग कहेंगे फिर मैं बुलाऊँगा, फिर आपकी बात में कुछ इखलास नहीं रहेगा। हमको इस्तग़फ़ार करना चाहिए अल्लाह के सामने कि आज हमारी कौम के अंदर इस तरह के कितने लोग पढ़ने वाले पैदा हो गए कि कौम को कहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ से कहाँ ले गए कि भाई ये अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, कुरान वहाँ से चलेगा भाई, ये नहीं पढ़ो वो नहीं पढ़ो के मसले में कुरान वहाँ से चले जाएगा और अल्लाह राजी नहीं होगा। फ़त्तक़ुल्लाह वातिउन, तुम अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, वो मेरी इताअत करो। कहा क्या कहा नूह अलैहि सलाम के खुदा का तक़वा अख्तियार करो, मेरी इताअत करो। ये दो बार आयत आई है, फ़त्तक़ुल्लाह वातिउन, ये आयत दो बार आई है, एक के बाद एक है ना, पहले तो 108 आयत भी आई है, फिर 110 आयत भी वही कोई अल्लाह ने आयत बयान कर दी। पता ना चला अल्लाह किस तरीके से, यही असल है। बाकी पैगंबरान में यही कहते देखे चले गए, फ़त्तक़ुल्लाह वातिउन, ये कुरान है फ़त्तक़ुल्लाह वातिउन। ये जो हम ये बस ये कुरान का लब लुबा भी है, इसलिए मौला को मौला मुत्तकियान कहते हैं। मौला अली को समझना है तो फ़त्तक़ुल्लाह वातिउन समझ लें आप, इसलिए उनको मौला मुत्तकियान कहा जाता है। आलू अनु मिनुल्लका फ़त्तेमुकल अर्दलून, उन्होंने जवाब दिया कि क्या हम आप पर ईमान ला जबकि रजील तरीन अफराद आपके इत्तेबा किया करते हैं। हर वक्त यही हुआ है, जितने पैगंबरान थे जो उनके जो भी उन पर ईमान लाए थे वो गरीब लोग थे, गरीब लोग थे। हालांकि हमारे सरकार को की खुशकिस्मती थी क्योंकि जो जोजा मिली पहली जोजा मिली वो अमीर तरीन थी, उन्होंने सरकार की मदद करी बीवी खतीजा ने। लेकिन जो भी ज़्यादातर जो लोग ईमान लाते थे वो गरीब तरीन लोग थे। सरकार के लिए भी कुरान में आयतें आई कि ये जो कुफ्फार कुरैश हैं जो पैसे वाले हैं कहते हैं कि आप इन लोगों के साथ क्यों हैं, गरीबों के साथ। और जब आप तो वही हालत सरकार के साथ भी हुई कि जो जो लोग गरीब थे उन्होंने पैरवी करी, जो कुफ्फार कुरैश थे जो के रईस लोग थे उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसी तरह इन्होंने कहा जो सरदार थे, सरदार ही हरकतें करते हैं। क्या कहा सरदारों ने कि क्या क्या हम आप ही मान लेंगे जबकि आपके जो जो इत्तेबा करने वाले हैं वो रजील तरीन लोग हैं, गरीब लोग। अरे ऐसी गुरबत पे सलाम जो कि ईमान दे दे, ऐसी दौलत पे लानत जो कि ईमान से दूर कर दे, अल्लाह से पनाह चाहे ऐसी दौलत। काला वमा इल्मी बिमा कानू यामलून इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी ला तशउरून। नूह ने कहा मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है अगर तुम कुछ शऊर रखते हो। उन्होंने दो बातें बताई, जब उन्होंने कहा कि ये आपके जो इत्तेबा करने वाले तो गरीब हो गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उनका दारोगा नहीं हूं, या मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं। अल्लाह जितना गैब का इल्म चाहता उतना देता है पैगंबरान को, कहा मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। और क्या कहा, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे अगर तुम कुछ शऊर रखते हो। पूरे कुरान की आइडियोलॉजी यही है कि हिसाब लेने वाला अल्लाह है, सिफारिशी के नंबरान है अल्लाह के इज्जत से, हिसाब अल्लाह लेगा। खबर क्या हो रही है अल्लाह को मालूम है, हमारा साथ क्या हो रहा है, हिसाब लेने वाला अल्लाह है, डरे अल्लाह से। इसीलिए दो बार आया था फतकुल्ला आती हूँ, क्योंकि हिसाब उसको लेना है कयामत के दिन, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ दौलत एक स्टैंडर्ड था उनके लिए, बाकी को समझ में नहीं आता था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं उनको निकालने वाला नहीं हूँ, इन अना इल्ला नदीरुम मुबीन, मैं बस वाज़े डराने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ डर सुनाने वाला हूँ। कालू ला इल्लम तंतही या नूह लतकूनन मिनल मरजूमीन, उन्होंने कहा ए नूह अगर आप बाज ना आए तो आप संसार किए जाने वालों में से हो जाएंगे। ये कमबख्त, ये जो पुराने ज़माने के जो कुफ्फार थे ये संसार किया करते थे अम्बिया, वो सलाम अम्बिया पे जो कि संसार से शहादत पाई, संसार किया करते थे। तो कहा अगर हम तुमको संसार कर देंगे, संसार की बहुत बड़ी सख्त मौत होती है। काला रब्बी इन कौमी कद कौम, नूह ने कहा ये मेरे परवरदिगार मेरे कौम ने मुझे झुठला दिया है, मुझे झुठला दिया है। ये झुठलाया, उनको ये तकलीफ थी कि इन्होंने झुठला के अपनी आखरत बिगाड़ी है, ये तकलीफ थी नूह अलैहिस्सलाम को। फख्त बैनी व बैनहुम फतहन व नजनी मन मअय मिनल मुमिनीन, तू मेरे और उनके दरमियान दो टूक फैसला कर दे और मुझे और जो मुमिनीन मेरे साथ हैं उन सबको निजात दे दे। कहा गए दो टूक फैसला कर दे, तो कहा गए के इनमें उनमें हम और उनमें फैसला कर दे, यानी जुदा जुदा कर दे, वो मुझे और मेरे साथ जितने मोमिनीन हैं उनको निजात दे दे। फअंजैनाहु ममाहु फिल फुल्की मशहून, तो हमने नूह को और उनकी तमाम साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। मशहून फुल्की मशहून मतलब भरी हुई कश्ती में सवार थे, वो बचाया। भरी हुई कश्ती से क्या मुराद थी, कश्ती को बड़ा आराम से बनाया गया था, बरसों लग गए थे बनाने में, और उसमें हर चीज़ मैसर थी, हर किस्म का जानवर जोड़ा जोड़ा रखा गया था। तो उसमें कई कमरे थे और कोई बहुत बड़ी कश्ती थी और हर जोड़ा जानवर रखा गया था। तो अल्लाह ने कहा फुल्की मशहून यानी भरी हुई कश्ती, तुम अगरना बादल बाकी, और उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया, अल्लाह ने कहा गर्क कर दिया। इसके तो कई हिस्टोरिकल फैक्ट आ चुके ना कश्ती नूह के, ये तो हिस्टोरिकल प्रूव है। इन नफी दाल आया मकान अख्तर हूँ मोमिनी इन रब कबूल अजीज़ रहीम, और बेशक इसमें बड़ी निशानियाँ हैं लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान न लाते, और बेशक आपका रब वो है जो गालिब और मेहरबान है। कोई आयत दो फिर से रिपीट करी जो दूसरे पैगंबरान के बारे में रिपीट करी थी, अल्लाह सुब्हान अल्लाह, वही कहा कि अक्सर लोग ईमान लाएंगे। बड़ी खुली खुली आयतें नूह अलैहि सलाम के लिए, कितना कितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि और उनकी कश्ती के टुकड़े क्यों साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए, फिर भी लोग ईमान न लाएंगे। क्योंकि अगर आपका दिल दुनिया में लगा हुआ है और आपका दिल गुनाहों से आलूदा है, तो आप कुछ भी हो जाएगा आप ईमान नहीं लाएंगे, और आप कुरान से दूर हैं और अहले बैत से दूर हैं, आप ईमान न लाएंगे। फिर भी अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने कहा कि मैं ज़बरदस्त हो बख्शने वाला हूँ, अल्लाह की बख्शिश का हमको इंतज़ार करना है, उनकी मेहरबानी है। बख्शिश नहीं, मेहरबानी है, रहीम से मतलब मेहरबानी है। कहा गया तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमको उसने मोहलत दी है, मोहलत दी है। अहले बैत की मिसाल भी कश्ती नूह की तरह है। अहले बैत सरकार ने फरमाया अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह, जो उसमें सवार वो बच गया और जो इसने उसको छोड़ दिया वो गर्क हो गया, कश्ती नूह की तरह। तो अहले बैत से मुंसलिक रहना वाजिब है, और जो लोग जिन लोगों ने अहले बैत को छोड़ा है वो गर्क हो गए, वो गर्क हो गए। अहले बैत से मुराद 14 मासूमीन है, अगर इनको छोड़ेंगे तो आप गर्क हो गए हैं। और ये चीज़ आज और जाहिर हो रही, जिस तरीके से जो लोग मुंसरी हैं अहले बैत से, अल्लाह ताला को इस दुनिया में कितनी इज्जत दे रहा है, कितनी उनमें ताकत है, रूहानी ताकत है, किस तरीके से अल्लाह उनको फतवाहत दे रहा है। आप देखें चेहलम के वक्त इमाम हुसैन के पास करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनके चेहरे की नूरानी देखें आप, और जिस तरीके से एक उनमें जोश है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, वो जोश आपको अहले बैत से मुंसलिक होकर मिलता है। अगर आपके पास सिर्फ कुरान और अहले बैत नहीं है तो आप सोचते हैं कौन मेहदी आने वाला है, क्या होगा, इमाम हुसैन ने क्यों शहादत दी, ये कन्फ्यूजन है। अगर आप अहले बैत से मुंसलिक हैं या इमाम हुसैन की शहादत आप उसे दर्स हासिल करते हैं, दूसरे भी करते हैं, लेकिन जो लोग अहले तश जो कि जो उनसे मुंसलिक हैं, जो उनको इमाम मानते हैं, उनकी मार्फत और जो सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बहुत फ़र्क है। जो उनको इमाम मानते हैं, ज़रूरी है कि इमाम कबूल करा जाए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सरकार के हदीस के हसनैन उम्मत के इमाम हैं, मुसलमानों के इमाम हैं हसन और हुसैन। अगर आपने इमाम हुसैन को इमाम कबूल करा जैसे तो बात है, अगर आपने कबूल न करा तो फिर उनकी मोहब्बत में वो तासीर नहीं है जो कि वो इमाम कबूल करने के बाद जो तासीर आपके दिल में पैदा होती है। मुसलमानों से अपील है कि हर मुसलमान इमाम हुसैन को अपना इमाम कबूल करे, ऐसा इमाम किस्मत वाले ऐसा इमाम मिला, किसको ऐसा इमाम मिलता है, जो हुसैन है ऐसा हुसैन दुनिया की हिस्ट्री में आप उनकी कुर्बानी है, वो कुर्बानी आपको आप हिस्ट्री में आपको कहीं दिखती नहीं है, न दिखे ही आगे ऐसा हुसैन है। इमाम हुसैन की आपको रूहानियत देखना है तो उनकी दुआ में रूहानियत देखिए। आज उनकी दुआएं जो है, आज दुआ पढ़ते हैं अपन, दुआ अरफा, जिस तरीके से करबला अपने आप एक शान है, उसी का ये दुआ जो है इमाम हुसैन की शान है, और एक तरह का एक उनका चैलेंज है दुनिया के लोगों को कि देखो अगर तुम हुसैन को पहचाना तो मेरी दुआ को पढ़ो। आज भी दुआ लिखी भी है, ये उनका एक चैलेंज है कि देखो तुम हुसैन को पहचानो, अगर तुम दुआ समझ लोगे तो तुम हुसैन को कुछ पहचान पाओगे, अगर तुम हुसैन को कुछ पहचान पाओगे तो अली को भी कुछ पहचान पाओगे। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि हमको इस वक्त हमको ज़रूरी है कि हमको मुंसलिक रहना है अहले बैत से, और कुरान से मुंसलिक रहना है, और हमको इमाम पे क्रिया करना है। अगर हमने इमाम पे क्रिया न करा, दिल न रोया और मोहब्बत जाहिर न करी तो हम सरकार को अपना क्या कोई दिखाएंगे। अल्लाह सुब्हान तआला तो हमको आज़ादारन हुसैन बना के दुनिया से उठाइए। अल्लाह लानतुल्लाह अल-क़ौम अल-ज़ालिमीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।